नमस्कार भारत, तारीख 9 अप्रैल, दिन मंगलवार। मैं हूँ मानसी दाश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर क्या हैं बड़े मुद्दे?
मोदी को वोट है, कैंडिडेट को नहीं। बीजेपी को भी वोट नहीं है, मोदी के लिए वोट है।
मायावती ना बचाती तो हमारा तो गांव सप्लाई मरता। हम बताएं, हम किसी की नहीं दे सकते।
किस हालत में है गेहूँ काटने वाली भूमिहीन मजदूर महिलाएं?
कोई कछु देता थी ना, कहा दिया सरकार इन्हें कि हमने पेंशन नहीं कही, पेंशन खोल दे, बालकनों खर्चा पानी को आ जाएगा, कोई ना करे।
सुनवाएंगे खास रिपोर्ट असम से।
NRC में ज्यादा इफेक्टेड है माइनॉरिटीज, लेकिन वो कैप से कंसर्न है जो मेनस्ट्रीम असमीज।
होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार, कमलेश मठेनी से। अमेरिका में खुफिया सेवा के निदेशक रेंडोल्फ एलिस ने इस्तीफा दे दिया है। 2 दिनों में गृह मंत्रालय से ये दूसरा इस्तीफा है। इससे पहले रविवार को ही अमेरिकी गृह मंत्री कियर्स्टन नीलसन ने इस्तीफा दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनसे प्रवासियों के मामले में सख्ती न बरतने को लेकर खुश नहीं थे। रेंडोल्फ एलिस से भी इसी मामले में नाराजगी बताई जा रही है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सेना की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। यह पहली बार है जब अमरीका ने किसी और देश की सेना को आतंकी संगठन करार दिया है। वहीं ईरान ने अमरीका के इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया है। रिवोल्यूशनरी गार्ड ईरानी सेना की एक शाखा है जिसका काम देश की इस्लामिक प्रणाली की सुरक्षा करना और उसे विदेशी हस्तक्षेप से बचाना है। साल 1979 की ईरानी क्रांति के बाद इसका गठन किया गया था। इस फैसले के बाद लगने वाले प्रतिबंध 1 हफ्ते के अंदर लागू हो जाएंगे। ईरान के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि ब्रायन हुक ने इस फैसले के कारणों के बारे में BBC को बताया।
The IRGC controls at least half of Iran's economy. The IRGC is also
Revolutionary Guard Corps ईरान की लगभग आधी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखती है। वो आतंक के जरिए ईरान की विदेश नीति को लागू करते हैं और दूसरे देशों में खौफ पैदा करते हैं। हम इस झूठ पर भरोसा नहीं कर सकते कि ये संगठन इसलिए आतंकी नहीं है क्योंकि ये सरकार का हिस्सा है। इसमें वो सभी बातें हैं कि इसे आतंकी संगठन माना जाए। ये थे ईरान के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि ब्रायन हुक। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में विद्रोही सेनाओं और सरकार के समर्थक सशस्त्र गुटों के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। एक हवाई हमले के कारण त्रिपोली के एकमात्र हवाई अड्डे को भी बंद करना पड़ा। सशस्त्र विद्रोही बलों के नेता जनरल खलीफा हफ्तार के सैनिकों ने त्रिपोली पर चढ़ाई शुरू कर दी थी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच लड़ाई छिड़ गई। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इस टकराव के चलते त्रिपोली के हजारों लोग अपना घर छोड़कर भागने को मजबूर हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टेफान ड्यूजरिक ने लीबिया के हालात के बारे में बताया।
Our humanitarian colleagues on the ground report that the escalation of violence in
वहां मौजूद हमारे सहकर्मियों की रिपोर्ट के मुताबिक त्रिपोली और उसके आसपास हिंसा बढ़ने से करीब 3400 लोग विस्थापित हो चुके हैं। कई जगहों पर बिजली कट चुकी है, घायलों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है, रिहायशी इलाकों में भारी हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है और बड़ी संख्या में लोग वहां फंसे हुए हैं। ये थे संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। सूडान में हजारों प्रदर्शनकारी तीसरे दिन भी राजधानी खार्टूम में सेना मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करते रहे। इन लोगों की मांग है कि राष्ट्रपति उमर अल बशीर अपना पद छोड़ दें और सेना एक नई सरकार के निर्माण में मदद करे। उमर अल बशीर करीब 30 सालों से सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन पिछले साल दिसंबर से उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सूडान के विदेश मंत्री ने कहा है कि वह देश में अराजकता नहीं फैलने देंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सनारो ने देश के शिक्षा मंत्री रिकार्डो वेलिस को पद से हटा दिया है। पिछले हफ्ते रिकार्डो वेलिस के बयान को लेकर विवाद छिड़ गया था। उन्होंने कहा था कि 1964 में किए गए सैन्य नियंत्रण को स्कूल की किताबों में सैन्य तख्ता पलट नहीं लिखा जाएगा। वह ब्राजील के सैन्य शासन को सकारात्मक रूप से दिखाने के लिए किताबों की समीक्षा करेंगे। कई अन्य अधिकारियों ने भी मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया है। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दाश का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर 11 अप्रैल को मतदान होना है। बीते लोकसभा चुनावों में इन सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। जानकार मानते हैं कि मोदी लहर का असर यहां भी पड़ा था, लेकिन क्या इस बार पहली जैसी कोई लहर है या इस बार यहां चुनावी मुद्दे क्या क्या हैं? बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा ने पश्चिमी यूपी के इन इलाकों का दौरा कर आपके लिए ये रिपोर्ट भेजी है।
देश के प्रति प्रेम प्लस लोगों को मोदी ने ही जागरूक करा है, वाकई अभी तक लोग सोए हुए थे। जागरूकता यही है कि देश के प्रति आदमी जागरूक है। इस समय हर आदमी देश के लिए मरने मिटने को तैयार है। इलेक्शन का मुद्दा सिर्फ मोदी और कुछ नहीं
ना जी, यहाँ तो बस मोदी की सरकार ही है। मोदी सबसे बढ़िया काम कर रहा है। मोदी को वोट है, कैंडिडेट को नहीं, बीजेपी को भी वोट नहीं है, मोदी के लिए वोट है। हमारे लिए तो सारे काम अच्छे लग रहे हैं। उसने नोटबंदी भी करी, वो भी अच्छा कराया, अपने देश को लिया चौथे नंबर पे लिया, ये भी अच्छा लग रहा है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दादरी इलाके के इन मतदाताओं के लिए चुनाव में मोदी के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। ये मतदाता नव जागृत राष्ट्रवाद के लिए आर्थिक मंदी तक झेलने के लिए तैयार हैं।
काम का मंदा है, महीने में 30 दिन काम था तो आज 15 दिन है, ये मंदा है। वाकई दिक्कत नहीं है कुछ भी, मंदी तो आने वाली 5 साल की भी झेल लेंगे।
सबके साथ ही है ऐसा था, जो एक के साथ है सबके साथ ही है। जब ऐसा ही काम होगा तो जब मंदा जो चल रहा था सभी झेल लेंगे इस बात को। तो
यहाँ से कुछ दूर गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र के निधावली गाँव के स्कूल पर नीले रंग के बोर्ड पर द ग्रेट जाटव लिखा है। ये दलित मतदाता मायावती के साथ मजबूती से जुड़े हैं।
हमारे तो एक को जाम है जी, सब यहाँ के सब मायावती को जाएगी, मोदी को नहीं जानेगी। मोदी को तो यहाँ तो मर जाएंगे जब भी ना जानेगी।
देखो भैया, हम तो मायावती के देंगे वोट। मायावती का यू गांव ही है, मायावती ना बचाती तो हमारा तो गांव सबला ही मरता। हम बतावे, हम किसी की नहीं दे सकते। चाहे हमें कोई 1 लाख रुपया 2 लाख दे दीजिए, हम नहीं देंगे काहे की।
पश्चिम उत्तर प्रदेश का इलाका अपनी बेहद उपजाऊ जमीन के लिए भी जाना जाता है। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के गाँव में मेरी मुलाकात कुछ किसानों से हुई जो फसल के कम दामों से नाराज तो हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को मौका देना चाहते हैं।
गन्ने का रेट ना बढ़ने से किसान नाराज है जी। इनका बीजेपी कुछ करेगी, लेकिन इन्होंने भी कुछ नहीं कर पाया, और की तरह ही रह गई ये। हाँ, बीजेपी को तो नो दे रहे हैं मोदी की वजह से, सिर्फ
की वजह से दे रहे हैं कि इन्होंने बदला लिया अपने जवानों का, जो बदला लिया इस वजह से ज्यादा दे रहे हैं। अन्य किसानों के लिए कोई खास नहीं करा बीजेपी ने।
हाँ, किसान का मनोबल इससे टूटा हुआ है थोड़ा सा जो है।
बिजनौर के ही एक गन्ना क्रय केंद्र पर मिला ये युवा किसान सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा करता है।
मैंने पिछली बार गन्ना बोया, लागत लगाई, ठीक पिछले साल लागत लगाई अपनी जेब से, इस बार गन्ना गेर रहा हूँ, अगले साल पेमेंट मिलेगा। कितना गैप आ गया, 2 साल का गैप। KCC हम लोगों पे सोसाइटी से खाद उठाते हैं उसका है, उनका तो ब्याज हमें हर साल जमा करना पड़ता है, नहीं जमा करेंगे तो उस पर पेनल्टी लगेगी। क्या हमारे गन्ने पे हमारी चीजों पे भी पेनल्टी लगा रही है? बिजली का 12 का बिल है, कंप्यूटर में सब कुछ ऑनलाइन है, जहाँ 31 मार्च हुई अपने आप ऑटोमेटिक ब्याज ऐड हो जाता है। हमारा कहीं ब्याज ऐड हो रहा है? बताइए आप, कहाँ कौन सा मुद्दा इन्होंने हमारा उठाया।
इसी केंद्र पर मुझे एक और युवा मिला जो गन्ने की पेमेंट न मिलने से परेशान तो है, लेकिन 56 इंच के सीने के लिए वोट देना चाहता है।
ये तो है, थोड़ा बहुत ब्याज दिया लग रहा, हमारा गन्ने का पेमेंट जब मिलेगा मिल ही जाएगा। अब हमारे पास जो कृषि कार्ड है उस पर बैंक वाले तीसरे दिन घर आकर खड़े हो, जहाँ भाई जमा करो ऐसा। हम भी कहते हैं भैया गन्ने पेमेंट करेंगे जमा, इतनी बात और तो कुछ ना। राष्ट्रवाद के नाम पर वोट दे रहे हैं, सेना की हमारी ताकत बढ़ रही है। सर्जिकल स्ट्राइक करते ही पुलवामा का हमला हुआ, हमारे 40 मरे, उन्होंने 300 मार दिए, तो हमारा वोट तो मोदी जी के साथ है। तो 56 इंची सीनाओं से तो देना ही पड़ेगा जी, बताओ। परचम लहर या पूरे विश्व भारत को विश्व गुरु बनाने की योजना है।
एक वर्ग मजदूरों का भी है जिसे ना कर्ज माफी का फायदा मिला है और ना ही किसी योजना का। नोटबंदी की वजह से नुकसान उठाने वाले व्यापारी भी सरकार का विकल्प तलाशने का मन बना रहे हैं।
मोदी के राज में कोई किसी को कुछ नहीं मिला सिवाय मुसीबत के अलावा गरीब आदमियों को। इनकी मान्यता पूरी नहीं हुई सरकार। अब काश्तकार तो हम है नहीं जी, काश्तकारों को तो कर दे 2-2 लाख 1-1 लाख रुपए उनको माफ, और गरीब आदमी का किसी का नहीं कुछ सोचा। हम तो मजदूर आदमी है जी।
गठबंधन को इसीलिए दे रहे जो भाई ने कहा, क्योंकि हम व्यापारी हैं। जब व्यापारी लोग परेशान आ गए इस चीज से कि पहले 10 लाख लिया थे, 5 लाख लिया थे, कोई कुछ नहीं होता, और अब जो है उसे पकड़ के दिखा दें कि हमने काला धन पकड़ा है और उसे ठाके बंद कर दें।
बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है। मुजफ्फरनगर के गांव की ये माँ अपनी बेटी को कॉलेज ले जा रही थी।
हमें तो वो अच्छा लगता है जो सबको बच्चे फिर दे, इन्हें हिल्ला मिलना चाहिए, हिलना मिलना चाहिए या अपने रोजगार पर लग जा, मोदी ले लो चाहे कोई भी ले लो भाई, रोजगार होना चाहिए बच्चों को भाई।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, बिजनौर, कैराना, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में 11 अप्रैल को मतदान होना है। यहाँ के मतदाता साफ साफ धर्म और जाति के आधार पर बटे हुए नजर आते हैं। देवबंद में मिला ये नौजवान कहता है,
जनता के बीच में जो वोट मांगे जा रहे हैं वो इस मुद्दे पे बिल्कुल नहीं है कि इनको शिक्षा देनी है जनता को कि भाई हमें शिक्षा मिलेगी, हमें रोजगार मिले, हमारी सड़कें अच्छी हों, ये एक बिल्कुल भी मुद्दा नहीं है। कोई जात की बात कर रहा है, कोई मुसलमान की सिर्फ, कोई सिर्फ हिंदू की बात कर रहा है।
लोकसभा चुनाव के इस पहले चरण में लोग शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य सेवाओं की बात नहीं कर रहे हैं। यदि कुछ बात हो रही है तो धर्म, जाति और राष्ट्रवाद की। दिलनवाज पाशा, BBC।
उत्तर प्रदेश के मथुरा में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए बीजेपी नेता और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने गेहूं के खेतों में पहुंचकर फसल काटते हुए अपनी तस्वीरें जारी की। उनकी इन तस्वीरों पर कईयों ने आलोचना की, लेकिन उन महिलाओं की जिंदगी कैसी है जो अपने परिवार का पेट भरने के लिए गेहूं की फसल काटती हैं, ये जानने के लिए हमारी सहयोगी पूनम कौशल ने कुछ ऐसी भूमिहीन मजदूर महिलाओं से बात की। सुनिए उनकी रिपोर्ट।
अप्रैल की गर्म दोपहरी में राजेंद्री अपनी छोटी छोटी पोतियों के साथ मिलकर गेहूं की फसल काट रही हैं। वो इस खेत की मालिक नहीं है बल्कि यहाँ मजदूरी कर रही हैं।
3 मन गेहूं मिलेंगे, 3 बीघा के मिलेंगे, 3 बीघा के, एक एक मन, 1 बीघे तो गेहूं को, 1 बीघे गेहूं को, 1 बीघे गेहूं को, जब 3 मन गेहूं मिलेंगे, जब कट जाओ तो मौत तक।
हाल ही में सिने अभिनेत्री और भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने दराती और गेहूं की बाली हाथ में लिए अपनी तस्वीरें साझा की थीं। कैमरे के लिए तस्वीर खिंचाना बहुत आसान है, लेकिन असल में गेहूं काटना कितना मुश्किल है खेत में गेहूं काटने आई ये महिलाएं बता रही हैं।
और हम गेहूं काटते हैं तो हताते शाम हो जाती है, हाथों में दर्द होता है।
गेहूं काटना बहुत मुश्किल काम है वैसे तो, और गर्मी लगती है, बहुत कड़ा काम है। एक दिन में हम पे 1 बीघे भी नहीं कटता, और 3-4 जने लगते हैं खेत में, शाम तक भी 300 रुपये की झाड़ी भी नहीं पड़ती।
बहुत कड़ा काम है,
मरे हैं बहुत गर्मी में मर रहे हैं, अब ना करें तो कहाँ से बच्चे न पालेंगे, क्या करें, गरीब आदमी तो कर ही सके हैं काम।
कितनी गर्मी पड़ रही है, हम जंगल में किधर रहे हैं देखो,
3:30 बजे आ गए हम यहाँ में, अभी फिर उतरा यहाँ से, बस अब काटेंगे सांता लग कदाई दिन मंद जाग जब जाएंगे आप।
लेकिन जरूरी नहीं कि हार तोड़ मेहनत के बाद भी पूरी मजदूरी मिल जाए।
मजूरी बड़ी कर रही दे, बाजा बाजा तो मजूरी खा जाए, रोते चले आमे जंगल ते, मेहनत करवा के भगाए दे।
मजदूरी यहाँ तो मजदूरी मजदूरी तो ऐसी है,
मजदूरी अब लगा लो, कल से बैठे हैं, क्या मजदूरी है हमारी, अब पेट के कारण करना पड़ रहा, बाबूजी क्या करें, इतनी हालत का गरीबी है कि मजबूरी में खेत में किधर न हो रहा बाबूजी हमें।
मजदूरी तो नहीं है, पेट को गुजारो है जाए, बस गरीबन के लिए तो कुछ है ही नहीं है बहन जी।
सरकार ने गरीब वर्ग के लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन इन भूमिहीन महिलाओं को कोई मदद मिलनी अभी बाकी है। सरकारी मदद के सवाल पर वो कहती हैं,
सरकार भी कुछ करना रही ना, अनाज पानी इतना महंगाई कर रहे हैं, तेल फेलने रो महंगाई कर रहे हैं, साग सब्जी निरी महंगाई कर रहे हैं, पैसा वारो तो जीत जाएगा, गरीब कैसे जीत जाएगा,
कोई तो ही नहीं, कोई कछु देता ही ना है, कहा दिया सरकार इन्हें कि हमने पेंशन नहीं कही, पेंशन खोल दो, बालकनो खर्चा पानी को आ जाएगा, कोई ना करे, मांग तांग के तो लत्ता पैरा में इतने मिल जाएंगे पैसा,
तो बच्चे न पालने, बिजली का बिल भी हम पता है वो भी ना उतर रहा, 5 बालक है हमारा, 1200-1300 रुपया दिए महीना के, वो भी ना जा पा रहा है, हम सुधर इतने गरीब हैंगे, हमारे 5 बालक है, दो
सहायता कुछ कोई करना नहीं हमारी, कितनी किसी की वोट गेर दें कोई सहायता नहीं होती हमारे लिए।
दिन भर खेत में पसीना बहाने के बाद भी इन्हें घर लौटकर सुकून के पल नसीब नहीं होते। इनमें से कुछ महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या ये है कि पति दारूबाज है।
हम खेतों में भी काम करते हैं हम, फिर घर जाके खाना भी बनाते हैं, और आदमी से ज्यादा काम करती हैं औरत, हाथों में दर्द होता है, परेशानी ज्यादा बन जाती है, काम नहीं होता है, फिर दारू बांट दे सरकार, पियो मौज ले, जनानी न को कुछ भी ना, जनानी न को तो
आदमी दारू बाजे, और खाने पीने को कुछ मिलना रहो, खेतन ते गुजारे कर रहे हैं, खेत क्यारी काट के बालकन ने पाल रहे हैं, फिर भी घर जाके परेशानी है रही है हमें।
सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं लाई है, कर्ज माफी भी की है, किसान सम्मान निधि के तहत 2000 रुपए किसानों के खातों में भी भेजे हैं, लेकिन इन भूमिहीन महिलाओं मजदूरों को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलता। मिलता, क्योंकि वो खेती का काम तो करती हैं, लेकिन भूमिहीन होने के कारण किसान नहीं हैं। यही वजह है कि ये महिलाएं बेहद मुश्किल हालात में रह रही हैं और इन्हें आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता।
कोई मजबूरी धुन ना करे, मजबूरी तो जब जमुना पे चले जाएंगे ना ऊपर, जब मजबूरी दूर होगी हमारी, ऐसा ना हो।
बीबीसी के लिए पूनम कौशल।
कार्यक्रम में अब रुख मेघालय का। मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी के नेतृत्व वाली डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार में शामिल होने के बावजूद यहां की दो संसदीय सीटों तुरा और शिलोंग से बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है, जबकि डेमोक्रेटिक अलायंस ने शिलोंग सीट पर अपना साझा उम्मीदवार उतारा है। ईसाई बहुल इस राज्य में बीजेपी को नागरिकता संशोधन विधेयक और गोमांस पर प्रतिबंध जैसे मुद्दों पर कठिन सवालों का सामना करना पड़ रहा है। सुनिए हमारे सहयोगी दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।
देश के पूर्वोत्तर राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जैसे शीर्ष नेता लगातार चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन मेघालय में पार्टी का कोई बड़ा नेता अभी तक नहीं आया है, जबकि मेघालय की दो लोकसभा सीटों के लिए 11 अप्रैल को मतदान होना है। दरअसल मेघालय में खासकर ग्रामीण मतदाता भगवा पार्टी के कथित हिंदुत्व एजेंडा को लेकर कसम है। शायद यही कारण रहा होगा कि भाजपा ने बीते 27 फरवरी को आदिवासी परिषद चुनाव में अपना एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा और इस चुनाव में अलायंस पार्टनर्स ने भी दूरी बना ली। आखिर भाजपा की किन बातों से यहां के लोगों को शिकायत है? शिलांग शहर में रहने वाली अमंदा बसाई मोइट ने कहा,
पीस बैन के बारे में अगर आप बात करें तो इंडिया तो एक सेकुलर कंट्री है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारे, कौन से गवर्नमेंट बीफ को बैन कर सकेगा? कम से कम नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं कर पाएगा। तो अगर बीजेपी इस मुद्दे के ऊपर रहेगा, बीजेपी का ट्राइबल वोट तो नहीं मिलेगा।
एनपीपी के प्रमुख मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा को काफी पहले इस बात का एहसास हो गया था कि नागरिकता संशोधन विधेयक का समर्थन करना उनको अपने प्रदेश में महंगा पड़ सकता है, लिहाजा अपने पार्टनर बीजेपी की परवाह किए बगैर संगमा ने इस बिल का विरोध किया। मेघालय की राजनीति को समझने वाले जोनेस लामरे कहते हैं,
बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो पीपल इन द रूरल एरियाज स्पेशली दे आर रियली स्केयर्ड दैट इफ बीजेपी कम्स टू पावर द फूड हैबिट्स वुड बी रिस्ट्रिक्टेड एंड रिलीजियस।
ग्रामीण लोगों के मन में ये डर है कि अगर भाजपा पावर में आती है तो वो उनके धार्मिक आजादी में दखल अंदाजी करेगी या फिर फूड हैबिट पर अंकुश लगाने का प्रयास होगा। इसके साथ ही नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर भी लोग काफी डरे हुए हैं। मेघालय प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सिबुन लिंगदो इस बार के चुनाव में पार्टी के केंद्रीय नेताओं से सहयोग नहीं मिलने से खफा है।
हम लोग का कैंडिडेट भी पैसा नहीं दे रहा है और पार्टी से भी पैसा कुछ नहीं दे रहा है, इसलिए थोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है। नहीं तो हवा बहुत ठीक है। अभी हम लोग के पास न कोई इलेक्शन प्रभारी है, न कोई संगठन मंत्री है, कुछ नहीं है ना जी।
शिलोंग लोकसभा सीट से 6 उम्मीदवार मैदान में है। इनमें सबसे मजबूत उम्मीदवार मौजूदा सांसद तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विंसेंट पाला को माना जा रहा है। वहीं तुरा सीट की बात करें तो 1991 से लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष पीए संगमा परिवार के सदस्य इस सीट पर जीत दर्ज करते आए हैं। दिलीप कुमार शर्मा, बीबीसी शिलांग।
और अब कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले जानते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबारों की सुर्खियां आज क्या हैं। स्टूडियो में अखबारों के साथ कमलेश हमारे साथ हैं। कमलेश बताएं, आज अखबारों में पहले पन्नों पर चुनावों की गर्मी किस कदर हावी है?
चुनावों की गर्मी तो इस कदर हावी है कि बीजेपी के घोषणा पत्र की खबरें लगभग सब अखबारों की पहली खबर है और सबने बड़ी बड़ी तस्वीरों और हेडलाइन के साथ इसे दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि बीजेपी ने कर में कटौती, किसानों, संस्कृति बचाने, राष्ट्रवाद और सुरक्षा जैसे मसलों को घोषणा पत्र में जगह दी है। इसके अलावा इसमें जो कुछ खास वादे हैं उनको हाईलाइट किया गया है कई जगहों पर, जैसे कि अनुच्छेद 35 को जम्मू कश्मीर से हटाना, राम मंदिर निर्माण का वादा, 3 तलाक और निकाह हलाला को खत्म करना, एनआरसी को पूरा करना, इस तरह के कुछ विवादित मुद्दे भी हैं जिनको बताया गया है। इसके अलावा किसानों के लिए जो 6,000 रुपये वाली आय समर्थन योजना थी इसको पूरा करने का वादा किया गया है। और ये भी खबर है कि कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र को टूटे हुए वादों की सूची कहा है।
जी।
इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस में खबर है कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान गिराने के दावे की पुष्टि के लिए रडार से ली गई कुछ तस्वीरें जारी की हैं, और इस तस्वीरों में दिखाया गया है कि कैसे F-16 विमान जो है वो MiG-21 विमान के सामने है। और इसके जवाब में आधी रात को पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट किया है कि बार बार कहने से झूठ सच नहीं बन जाता। अखबार में ही एक और खबर है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के रिश्तेदारों और सहयोगियों के घर पर छापेमारी में 281 करोड़ रुपए नगद की वसूली के एक रैकेट का पता चला है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है, साथ ही ये भी कहा है कि इसमें से 20 करोड़ रुपए दिल्ली में एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के मुख्यालय में भेजे गए हैं। और एक खबर और है जो जनसत्ता में है कि 5 बूथों पर VVPAT का औचक मिलान होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हर लोकसभा सीट के हर विधानसभा क्षेत्र में 5 बूथों पर VVPAT पर्चियों का EVM से मिलान किया जाएगा, जबकि विपक्षी दलों ने मांग की थी कि करीब 50%
बूथों पर मिलान किया जाए। जी, अखबारों की विस्तृत समीक्षा के लिए धन्यवाद कमलेश मठेनी। और अब वक्त है खास रिपोर्ट का। असम की 14 में से 5 लोकसभा सीटों पर 11 अप्रैल को मतदान होना है। बीते कुछ महीनों में कौन है नागरिक और कौन बाहरी, यानी NRC का मुद्दा सियासत के केंद्र में आ गया है। अभी मतदान से पहले ये मुद्दे कहाँ खड़े हैं, यही जानने के लिए BBC संवाददाता विकास त्रिवेदी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे इलाकों में डिब्रूगढ़ से धुबरी तक गए। सुनिए उनकी रिपोर्ट।
असम की ब्रह्मपुत्र बाहरियों को लेकर चले आंदोलनों के इतिहास की गवाह। इन आंदोलन का शिकार बांग्लादेश और यूपी बिहार जैसे राज्यों से आए लोग भी रहे थे। ऐसे लोगों को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC ने कुछ राहत तो दी, लेकिन सत्ता में बैठी BJP के बहुप्रचारित नागरिकता संशोधन बिल यानी CAB ने नई चिंताएं भी पैदा की।
अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के आए हुए क्रिश्चियन, बौद्ध और हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है, कोई शरणार्थी को वापिस भेजने का कोई कार्यक्रम।
एक तरफ नागरिकता संशोधन बिल का डर और दूसरी तरफ NRC से मिली राहतें। डिब्रूगढ़ में बोगीबिल पुल के पास आईथंग गांव में UPSC की तैयारी करने वाले शंकर का परिवार बिहार से आकर बसा था। शंकर की माँ का नाम NRC में नहीं आया है, लेकिन वो फिर भी खुश हैं।
यहाँ पर कि जो लोकल आदमी है, जो असम को वासी है, वो लोग ना अब ये बात नहीं बोल पा रहे हैं कि तुम लोग असम बिहारी हो यहाँ से चला जाओ, तुम नेपाली हो यहाँ से चला जाओ।
लोकसभा चुनावों बाद BJP जिस नागरिकता संशोधन बिल को लाने की बात कर रही है, उसे असम के क्षेत्रीय दल 1985 में हुए असम समझौते का उल्लंघन बता रहे हैं। असम के लाखों लोगों का नाम फिलहाल NRC में नहीं है, प्रक्रिया जारी है, लेकिन एक डर के साथ। लोगों का ये डर तब और बढ़ जाता है जब CAB के आने पर बांग्लादेश से आने वाले हिंदुओं की वजह से असमिया लोगों की रोजी रोटी छीनने की बातें होती हैं। लेकिन सत्तारूढ़ BJP इससे इत्तेफाक नहीं रखती। डिब्रूगढ़ में BJP सांसद रामेश्वर तेली कहते हैं,
बहुत से ऐसे लोग भी हैं सिटीजनशिप के बारे में पता ही नहीं है, फिर भी जैसे चाय बागान के लोगों के लिए ऐसा हो गया था कि चाय बागान के लोग भी रास्ते पे आ गया था कि हिंदू बंगाली आ जाएंगे, चाय बागान में आ जाएंगे, पता तोड़ेंगे, हमें काम नहीं मिलेगा। इस तरह से जब हम लोग जाकर समझाने लगा तो ये जो सिचुएशन था शांत हो।
NRC के दौरान तकलीफों के बादल लोअर असम के बागसा जिले में भी छाए, जहां से NRC लिस्ट में नाम न आने पर आत्महत्या की खबरें आईं। हालांकि प्रशासन इन मौतों की वजह NRC को नहीं मानता है, लेकिन शोधकर्ता और परिवार ऐसा नहीं मानते। बागसा जिले की माबिया बीबी के पति की NRC प्रक्रिया के दौरान मौत हो गई थी।
NRC द्वारा नहीं मारा गया,
मेरा पति NRC की वजह से ही मरा था। सुबह से ठीक था, अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही NRC की लिस्ट आई, उसने देखा और उसे नाम नहीं मिला, तभी उसे दिल का दौरा पड़ा और वह वहीं मर गया।
दशकों बाद NRC प्रक्रिया अब जब अपने अंतिम चरण में है, तब CAB के आने से कुछ असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। NRC और CAB के फर्क को गुवाहाटी में वरिष्ठ पत्रकार बैकुंठनाथ गोस्वामी कुछ क्यों समझाते हैं।
NRC में ज्यादा इफेक्टेड है माइनॉरिटीज, लेकिन वो CAB से कंसर्न है जो मेनस्ट्रीम असमीज, क्योंकि रिलीजन को ऊपर सिटीजनशिप देने को 1970 और से 1975 में एक हिंदू और एक मुस्लिम असम में घुसा था, उसमें से वो हिंदू को सिटीजनशिप मिल जाएगा, मुस्लिम को मिलेगा नहीं।
जानकार बताते हैं कि बीजेपी का कैप को लाने का मकसद अपनी हिंदुत्ववादी छवि को और मजबूत करना है ताकि चुनावी फायदा लिया जा सके। ऐसे में हिंदुत्व की बात करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इन सब पर क्या कहना है? डिब्रूगढ़ में संघ प्रचारक गौरीशंकर चक्रवर्ती बताते हैं,
संघ ने हमेशा कहा है कहीं से भी जो हिंदू मूल के व्यक्ति वो किसी कारण से कष्ट पा करके अपने धर्म की रक्षा के लिए, जान बचाने के लिए अगर भारत में आ जाते हैं, शरण लेते हैं, तो उनको भारत में शरण देना चाहिए और इतने वर्षों से जो लोग रह रहे हैं उनको तो सिटीजनशिप भी देना चाहिए।
एनआरसी में हुई गलतियां और कैब में मुसलमानों को शामिल न किए जाने के मुद्दे को असम के नागरिक कैसे देखते हैं? हमारी मुलाकात बांग्लादेश बॉर्डर से सटे धुबरी में एक हिंदू बंगाली परिवार से हुई।
वो लोग को तो ऐसे तो छोड़ देना चाहिए था मुस्लिम लोग को, नहीं वो लोग को तो इंडिया में जॉब दिया था, वो तो सब बांग्लादेशी से आके इंडिया में आके मैंने कांग्रेस सरकार जो पहले था वो सब मैंने कागज में सब लेकर के वो सब इंडिया सिटीजनशिप बना लिया है।
एनआरसी प्रक्रिया कांग्रेस के दौर में शुरू हुई थी, लेकिन अब असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई इसे रद्दी का कागज बताते हैं।
ये तो आज वेस्ट पेपर ही थ्रो देम, ये ब्रह्मपुत्र में आज है जस्ट थ्रो देम दिस एनआरसी पेपर, ये तो वैल्यूलेस पेपर बना लिया।
अल्लाह मेहरबानी अपना लोगों दुआ है।
कांग्रेस भले ही एनआरसी को रद्दी का कागज बताती है, लेकिन इसे बाकी देश में भी लागू करने की कुछ आवाजें उठती रही हैं। ये आवाजें बांग्ला भाषी मुस्लिम बहुल आबादी वाले लोअर असम से भी सुनाई देती हैं। धुबरी से AIUDF के सांसद बद्रुद्दीन अजमल कहते हैं,
एनआरसी को पूरे देश में लागू करना चाहिए लेकिन कैब को नहीं लागू करना चाहिए, वो तो बंगला यहाँ तो असम में ला रहे हैं क्योंकि ये बांग्लादेशियों को लाने के बाद उनको जो पॉलिटिकल फायदा मिलना चाहिए वो सिर्फ असम में मिलेगा, ये मजहब की बुनियाद के ऊपर, धर्म की बुनियाद के ऊपर लाना चाह रहे हैं।
नैतिकता त्रष्ट हुई, मानवता भ्रष्ट हुई, निर्लज्ज भाव से।
एनआरसी कैप को लेकर असम की बराक और ब्रह्मपुत्र वैली में एक डर भी साथ साथ बहता है। धुबरी से ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश की ओर चली जाती है, लेकिन वो डर असम में ही कायम रहता है। विकास त्रिवेदी, BBC असम।
असम पर ये खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। और अब चलते चलते सुनते हैं खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। कल IPL 12 में एक मैच खेला गया जिसमें किंग्स 11 पंजाब ने अपने ही घर मोहाली में सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से मात दी। जीत के लिए 151 रनों का लक्ष्य पंजाब ने सलामी बल्लेबाज KL राहुल के नाबाद 71 और मयंक अग्रवाल के 55 रनों की मदद से 19.5 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल किया। KL राहुल ने 53 गेंदों का सामना करते हुए 7 चौके और 1 छक्के की मदद से ये नाबाद 71 रन बनाए। मयंक अग्रवाल ने 55 रनों की पारी के लिए 43 गेंदों पर 3 चौके और 3 छक्कों का सहारा लिया। इसके साथ ही KL राहुल ने पिछले मैच में मिली धीमी बल्लेबाजी की बदनामी को धो डाला। पिछले मैच में उनके सुस्त रफ्तार से बनाए गए 55 रनों को चेन्नई के खिलाफ हार का कारण माना गया था। खासकर सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हुई थी। वहीं आज से सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है, जहां पुरुष एकल वर्ग में भारत की चुनौती 6ठी वरीयता हासिल के श्रीकांत के अलावा HS प्रणय, BSAI प्रणीत और समीर वर्मा पर होगी। महिला एकल वर्ग में भारत का दारोमदार 4थी वरीयता हासिल PV सिंधु और 6ठी वरीयता हासिल साइना नेहवाल के कंधों पर होगा।
और कार्यक्रम में आपसे विदा लें उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर कमलेश मठेनी से।
BBC समाचार। अमेरिका में खुफिया सेवा के निदेशक रैंडोल्फ एलिस ने इस्तीफा दे दिया है। 2 दिनों में गृह मंत्रालय से ये दूसरा इस्तीफा है। इससे पहले रविवार को अमेरिकी गृह मंत्री कियर्स्टन नीलसन ने इस्तीफा दिया था। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सेना के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉप्स को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। ईरान ने इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में विद्रोही सेनाओं और सरकार के समर्थक सशस्त्र गुटों के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। एक हवाई हमले के कारण त्रिपोली के एकमात्र हवाई अड्डे को भी बंद करना पड़ा। सूडान में हजारों प्रदर्शनकारी तीसरे दिन भी राजधानी खार्टूम में सेना मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करते रहे। इन लोगों की मांग है कि राष्ट्रपति उमर अल बशीर अपना पद छोड़ दें और सेना एक नई सरकार के निर्माण में मदद करे। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने देश के शिक्षा मंत्री रिकार्डो वेलिस को पद से हटा दिया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला अजीत सारथी ने। अगला प्रसारण दिन भर शाम 7:30 बजे। फिलहाल मानसी दास समेत टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।